हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के बुधवार के कार्यक्रम में। दूसरा अध्याय, भगवान अर्जुन को पुष्पिता वाणी और उसके परिणाम क्या हैं इसका वर्णन कर रहे हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो भोग और ऐश्वर्य से प्रकृष्ट रूपेण आसक्त रहते हैं वो जीव भगवान के शब्दों को भी अपने भोग और ऐश्वर्य के संदर्भ में ही अपनाते हैं, अर्थात वेदों को। और वेद जो हैं वो एक समुद्र के समान है। अब समुद्र में कोई तैरने जाता है, समुद्र में से कोई मोती चुनकर ला सकता है, समुद्र में से कोई मछली भी लाता है, तो वही समुद्र मोती भी उत्पादित करता है, मछली भी उत्पादित करता है। वेदों में जो इस प्रकार की वाणी है जो कि हमारे भोग और ऐश्वर्य के संदर्भ में कही गई है, उसे बताते हुए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम जो शास्त्रों के आधार पर युद्ध नहीं करने का संकल्प लिए हो, वही जो शास्त्र हैं वो तीन गुणों के अधीन भी हमें कार्य करने के लिए कहते हैं, और वही शास्त्र हमें तीन गुणों के परे भी ले जा सकते हैं। और इसी संदर्भ में आज का श्लोक भगवान कह रहे हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्त्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान्। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्त्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान्। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। हे अर्जुन, भगवान कह रहे हैं त्रैगुण्य विषया वेदा, तीन गुणों के विषय में जो वेदों में वाणी बताई गई है उससे ऊपर उठो और निस्त्रैगुण्य बनो, निर्द्वंद्व बनो, नित्य सत्व में स्थित हो, निर्योग क्षेम अर्थात योग क्षेम की चिंता मत करो और आत्मवान बनो। तो यहां पर भगवान अर्जुन को छह शिक्षाएं दे रहे हैं तीन गुणों के संदर्भ में, और वेदों में जो तीन गुणों से संबंधित वाक्य हैं उसके संदर्भ में। तो आज हम चर्चा करेंगे पिछले श्लोक से आज के श्लोक का क्या संबंध है, और छह मुख्य शिक्षाएं भगवान आज के श्लोक में अर्जुन को कौन कौन सी दे रहे हैं। तो हमने पिछले श्लोक में देखा पुष्पिता वाणी एवं भोग ऐश्वर्य के परिणाम क्या होते हैं, भोग पुष्पिता वाणी के परिणाम है भोग और ऐश्वर्य। भोग और ऐश्वर्य का परिणाम अव्यवसायात्मिका बुद्धि। भूल गए कि जो बुद्धि है वो व्यवसायात्मिका नहीं रहती, बहुशाखा, बहुत सारी शाखाएं इस बुद्धि की हो जाती हैं जो कि भगवान में केंद्र नहीं हो सकती। और आज के श्लोक में भगवान पुष्पिता वाणी एवं भोग ऐश्वर्य के ऊपर का कौन सा स्तर है, तो भगवान एक एक श्लोक में अर्जुन को क्रमशः जो शुद्ध भक्ति है उसके मार्ग तक ले आ रहे हैं। तो यहां पर समझना चाहिए कि भगवान एक बहुत ही निपुण शिक्षक के समान हैं जो कि एक साथ ही पूरा डोज नहीं दे रहे, क्रमशः, जैसे वो ABCD सिखाता है पहले, फिर बाद में सिखाता है कि कैसे वो ABCD के वर्ड्स बनते हैं, स्टेटमेंट्स बनते हैं, फिर जो कुछ निबंध लिख सकते हो आप उसके संदर्भ। तो वैसे भगवान क्रमशः अर्जुन को इस शिक्षा के प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं। तो आज के श्लोक में 6 मुख्य शिक्षाएं। सर्वप्रथम भगवान कह रहे हैं कि वेदों में मुख्यतया 3 गुणों का वर्णन हुआ है, और फिर भगवान कहते हैं निस्त्रैगुण्यो, हे अर्जुन तुम इन 3 गुणों से ऊपर उठो, तुम निर्द्वंद बनो अर्थात द्वंद्वों से परे, तुम नित्य शुद्ध सत्व में स्थित हो, तुम योग क्षेम की चिंता न करते हुए आत्मवान बनो। तो देखिए भगवद गीता का एक ये श्लोक जिसके अंदर भगवान 3 गुण, वेदों में वर्णित 3 गुण, और उन वेदों में वर्णित 3 गुण के परे कोई व्यक्ति कैसे जा सकता है, या अर्जुन क्यों और कैसे जाए, और जाने के बाद क्या करना, ये सब एक ही श्लोक में पूरा भगवान ने पैक कर दे दिया। तो अगर ये एक श्लोक भी हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, हालांकि है दूसरे अध्याय का केवल, लेकिन फिर भी और आगे कितने 16 अध्याय हैं, लेकिन फिर भी एक ये श्लोक हमें हमारे जीवन की सफलता प्राप्त करा कर दे सकता है। तो एक एक शिक्षा को हम लेंगे। वेदों में मुख्यतया 3 गुणों का वर्णन हुआ है। अब हम सब 3 गुण जानते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो अब ये सारे जो शास्त्र हैं, क्या ये कपोल कल्पित शास्त्र हैं? शास्त्र तो कपोल कल्पित नहीं हो सकते, किसी के मन में कुछ आया और शास्त्र बना दिया। तो अब यदि हम लें आयुर्वेद, ये एक शास्त्र है, तो ये हमें कौन से गुण में स्थित करता है, या ये शास्त्र, ये वेद की वाणी कौन से मनुष्यों के लिए है, कौन से गुण में स्थित होने के लिए? सत्वगुण। फिर हम ये यदि लें ज्योतिष शास्त्र, अच्छा आपको ये बताएं कि आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र ये दोनों संबंधित हैं। आजकल तो खैर कलयुग में सब कुछ उल्टा हो चुका है, परंतु पिछले युगों में जो वैद्य हुआ करते थे वो ज्योतिष शास्त्र भी जानते थे। क्या कारण है इसका? वैद्य एक ज्योतिषी भी हुआ करता था। हाँ, तो पहले वो केवल जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है वो जानकर व्यक्तियों को बताते थे। ये नहीं कि आप कितना बड़ा आपका बिजनेस होने वाला है, आप कितना कब मरोगे, ये सब नहीं, या विदेश यात्रा कब होगी, ये सारी चीजें नहीं। तो व्यक्ति जब आता, कोई बीमार व्यक्ति, तो उसके मेडिकल एस्ट्रोलॉजी देखकर वो व्यक्ति उसे बताता कि उसके पास्ट में क्या हुआ है। और ज्यादातर जो ज्योतिषी होते हैं वो जब पास्ट बताते हैं तो विश्वास उस व्यक्ति का बढ़ जाता, पक्का हो जाता है कि अरे इसको कैसे पता मेरे पास्ट के बारे में। तो क्योंकि एक मरीज और वैद्य के बीच सर्वप्रथम श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा नहीं तो ट्रीटमेंट नहीं कर सकता वैद्य। तो श्रद्धा जागृत करने के लिए उसे ज्योतिष शास्त्र भी जानना आवश्यक था। तो इसलिए वो ज्योतिष शास्त्र के बलबूते पर श्रद्धा उस मरीज की अर्जित करता वैद्य, और फिर उसे उपचार देता। तो यहां पर यह समझना है कि वो ज्योतिष शास्त्र जो कि किसी के स्वास्थ्य के लिए, और वो स्वास्थ्य किस लिए, ताकि आयुर्वेद के आधार पर वो अपना जीवन जिए। ये नहीं, आजकल तो आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र का इस्तेमाल किया जा रहा है तमोगुण रजोगुण में जाने के लिए। तो ज्योतिष शास्त्र और आयुर्वेद का इस्तेमाल सत्वगुण और उसके परे शुद्ध सत्व में जाने के लिए हुआ करता था। तो आजकल पाश्चात्य देश में बहुत आयुर्वेद का भी बोलबाला है, परंतु उनका जो रहन सहन है वो आयुर्वेद का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, ताकि बीमारी, वो जानते हैं कि आयुर्वेद ही कुछ बीमारियों को ठीक कर सकता है, और फिर उन बीमारियों से मुक्त होने के पश्चात करते क्या है, आयुर्वेद के अनुसार जीवन नहीं जीते, वो अलग टॉपिक है। तो आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र ये दोनों संबंध है, जो कि सत्व गुण में व्यक्ति को स्थित करने के लिए जीवन शैली। फिर अर्थशास्त्र एक शास्त्र है, धर्म अर्थ, अर्थ कैसे अर्जित करें, तो ये है अब धीरे धीरे सत्वगुण से रजोगुण, कि हाँ भाई स्वास्थ्य अच्छा हो गया और कुछ फ्यूचर भी अब सुरक्षित है। ज्योतिष ने बता दिया है किस प्रकार के पथ्य का पालन करोगे तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही स्वस्थ रहेगा। तो अब स्वस्थ फ्यूचर के लिए करें क्या, अर्थ, अर्थ अर्जन। और फिर काम सूत्र, ये भी एक शास्त्र है। फिर वो रजोगुण की इंटेंसिटी बढ़ते जाती है, और फिर तंत्र शास्त्र, ये सब तमोगुण के अंदर जो तांत्रिक इत्यादि जो तमोगुण की क्रियाएं होती हैं। तो यहां पर हम किसकी बातें कर रहे हैं, यहां पर हम बातें कर रहे हैं कोई रेलवे स्टेशन पर बिकने वाली मायापुरी मैगजीन की नहीं, हम वेदों की बातें कर रहे हैं, जो भगवान कह रहे हैं त्रैगुण्य विषया वेदा। वेदों में तीनों गुण के विषय हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा का अर्थ क्या है, तीनों गुणों के विषय वेदों में वर्णित है। तो यदि भगवान ये बता रहे हैं कि यदि किसी को तीन गुण से संबंधित भी कुछ पढ़ना है तो वेद खोलो, ये फालतू स्टारडस्ट सिनेब्लिस क्या 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 मैगजीन लोग पढ़ते रहते हैं, इन सब से व्यक्ति का शुद्धिकरण नहीं। लेकिन यहां पर व्यक्ति का शुद्धिकरण हाँ धीरे होगा, जब तक कि वो शुद्ध शास्त्रों को नहीं पढ़ेगा, लेकिन फिर भी उसकी शुरुआत तो होगी। तो यदि हम अब इनको लें, तो भगवान 11वें स्कंद में उद्धव जी को कहते हैं सुंदर श्लोक में, पुरुषम सत्व संयुक्तम अनुमीय चाम दीभि कामादि भी रजो युक्तम क्रोधाश्च तमास तमसायुतम। कि जो व्यक्ति आत्मसंयमी होता है वो सत्वगुण में स्थित है, जो व्यक्ति बहुत कामुक वो व्यक्ति रजोगुण में, और जो बहुत क्रोधी स्वभाव का वो तमोगुण में स्थित है। तो यहां पर सर्वप्रथम भगवान कह रहे हैं उद्धव जी को कि आत्मसंयमी व्यक्ति वो सत्वगुण में स्थित रहता है। तो इससे यह समझना है कि जब अब आत्मसंयमी का अर्थ ये नहीं कि कोई चारा नहीं इसलिए आत्मसंयमी जीवन जीना पड़ रहा है उसको। जैसे बहुत से ऐसे गरीब होते हैं, वो अंग्रेजी की कहावत है, मोरालिटी इज नॉट लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि कोई घर मिला ही नहीं चोरी करने के लिए इसलिए मैं कानून को फॉलो कर रहा हूं। ये इसे सत्वगुण नहीं कहेंगे। यहां पर भगवान कह रहे हैं कि जो चेष्टा करता है उस प्रकार का जीवन जीने की, आत्मसंयमी जीवन, वो सत्वगुण में स्थित होता है। और वैसे ही रजोगुण व्यक्ति, ऐसा नहीं कि उसने हाथ ऊपर किए और पैसे ऐसे उछलते रहते हैं। रजोगुणी व्यक्ति अथक प्रयास करता है अपनी काम वासना और अर्थ अर्जन में। तो जो चेष्टा करे, ऐसा नहीं कि जिसकी स्थिति प्रारब्धों के अनुसार ऐसी है, जो चेष्टा करता है इन प्रकार इस प्रकार के कार्यों में लगने की, वो है सत्वगुणी या रजोगुणी। और भगवान कहते हैं जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का रहता है वो व्यक्ति तमोगुण में स्थित रहता है। यहां पर फिर वो व्यक्ति नहीं कि जिसे पता नहीं कि क्रोध, अत्यधिक क्रोध के परिणाम क्या होते हैं, उसे पता है। तो यहां पर भगवान उद्धव जी को बोल रहे हैं कि ये जो तीन लक्षण हैं, व्यक्ति जो तीन गुणों में स्थित, तीन लक्षण जो हैं, इनको भी वो जीव भगवत सेवा में लगा सकता है और लगाते हुए अपने आप को वो शुद्ध कर सकता है। तो हमारे वैष्णव आचार्यों ने एक सुंदर उदाहरण दिया है। अब ये दो चित्रों से क्या समझ में आ रहा है आपको, जो हमने मुद्दा अभी अभी डिस्कस किया? जो पहला चित्र है, गाय घास चर रही है, और क्या है, गाय घास चर रही है और क्या है, फेंसिंग है ना, दिख रहा है ना फेंसिंग। और यहां पर, वहां पर कुछ गाय घास चर रही हैं और ये गाय इस तरफ देख रही है। अंग्रेजी में कहावत है ना, द ग्रास लुक्स ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। और ये यहां पर आके अब वो फेंसिंग से बाहर देख रही है। ये क्या स्थिति है अभी, केवल देख नहीं रही, अब सर बाहर निकाल लिया, गर्दन बाहर निकाल लिया। तो ये उदाहरण दिया गया है कि हमारे इंद्रिय भोग की व्यवस्था वो घास चरने के समान है। हम कौन है, उस गाय के समान, और हमारी इंद्रिय भोग की व्यवस्था घास चरने के समान है। और जो वेदों में इंद्रिय भोग की प्रक्रिया बताई गई है वो फेंसिंग है, कि वो फेंसिंग के अंदर घास चरो, घास ही चरना है ना, वो फेंसिंग के अंदर घास चरो। लेकिन बद्ध जीव की आदत क्या है कि वो फेंस के बाहर वाला जो घास है वो क्यों नहीं। अर्थात जो शास्त्रों के बाहर इंद्रिय भोग लिखा वो क्यों नहीं करूं मैं? धर्मो विरुद्धो भूतेषु, भगवान कहते हैं कि जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, भगवान कहते हैं मैं वो काम वासना हूं। देखिए भगवद गीता में कामोस्मि भगवान कहते भरतर्षभ, अर्थात इस भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो धर्म के विरुद्ध वासनाएं या इच्छाएं या कामनाएं होती हैं वो अधर्म कहलाती। तो यहां पर बद्ध जीव की स्थिति बताई गई है इस प्रकार से कि वो जो शास्त्रों में एक प्रकार का हेल्दी सेंस ग्रेटिफिकेशन यदि बोले तो जैसे कि श्रील प्रभुपाद उदाहरण दिया करते थे चार्वाक मुनि का, कि चार्वाक मुनि क्योंकि पिछले युग का था तो कम से कम इंद्रिय भोग की परिभाषा भी उसके शास्त्रों से कुछ संबंधित थी। यावत जीवित सुखम जीवित, हां बोल रहा था वो, जब तक जियो बस ऐशो आराम में इंद्रिय भोग में जियो, लेकिन उसका अंडरस्टैंडिंग क्या था, घृतम पीबे, अरे घी पियो, दारू नहीं बोला उसने, पीने के लिए भी बोला घृतम पीबे, घी पियो, इंद्रिय भोग करो, अच्छा घी में पका हुआ खाओ, उसने ये नहीं कहा अंडा मटन मछली मांस, ये नहीं कहा चार्वाक मुनि। तो अब मनुष्य जो बद्ध जीव है वो क्या करता है कि हां केवल वो पहली दो लाइन पकड़ता है, यावत जीवित सुखम जीवित, और बाकी का वो मैं अपने अनुसार ट्रांसलेट करूंगा। तो वो ये स्थिति होती है, धीरे धीरे हम जो शास्त्रों या वेदों में तीन गुण जो बताए गए हैं उनके संदर्भ में जो इंद्रिय भोग बताया गया उससे परे हम प्रलोभित होते हैं इस प्रकार से, और धीरे धीरे हम जो वैदिक स्कूल है उसके बाहर आने का प्रयास करते हैं, जैसे कि ये गाय कर रहे, और फिर वो व्यक्ति इस भौतिक संसार में पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम ये सब उसका चलता रहता है अन्य योनियों में। तो ये सुंदर उदाहरण हमारे वैष्णव आचार्यों ने दिया है कि त्रैगुण्य विषया वेद, कि वेदों में ये जो तीन गुण के विषय बताए गए हैं वो हमारे लिए एक प्रकार का प्रोटेक्शन है, वो फेंसिंग है। ये नहीं कि भगवान निर्दयी हैं, कि भगवान खुद अपना भोग कर रहे हैं रासलीला कर रहे हैं और हमें कोई काली कोठड़ी में फेंक दिया है, नहीं, भगवान ने अरेंजमेंट किया है, घास रखा है हमारे लिए, लेकिन फिर हमारी स्थिति नहीं, ये क्यों घास खाऊं मैं, दूसरा जो मुझे दिखने में अच्छा दिखता है। और इसलिए माया देवी करती क्या है कि जो फेंस के बाहर का घास है उसे और ज्यादा अच्छा दिखाती है, वो दिखने में ज्यादा अच्छा दिखता है ना, है ना, दिखने में ज्यादा अच्छा दिखता है। तो माया देवी का कार्य यही है कि वो घास को ज्यादा अच्छा दिखाए। इसलिए आप देखिए एक ये ह्यूमन साइकोलॉजी कि किसी एक व्यक्ति ने घर खरीदा तो बगल वाले का घर ज्यादा अच्छा लोकेशन का दिखता है उसको, गाड़ी खरीदी बगल वाले की गाड़ी थोड़ी ज्यादा अच्छी दिखती, बगल वाले के प्लेट का लड्डू ज्यादा अच्छा दिखता है, बड़ा दिखता है, वही प्रसाद बांटा जा रहा है काउंटर पे, हाँ से मेनू सेम है लेकिन बगल वाले के प्लेट में ज्यादा अच्छा दिखता है। तो देखिए आप स्थिति, आप बैठे हो प्रसाद लिए, सब लोग लाइन में प्रसाद लेकर, अब आप बैठे हो लाइन में, बगल वाले के प्लेट में वही है गुलाब जामुन, वही दाल राई सब्जी, तो धीरे धीरे आप अपना हाथ उसके प्लेट में डालना शुरू करो, देखो क्या होगा फिर। तो उसी प्रकार से जब हमारे लिए जो निर्धारित भगवान ने इंद्रिय भोग भी दिया है उसको छोड़कर जब हम और यहां कहां ताकते रहते हैं अपना मुंह मारते रहते हैं, मुंह मार रही ने गाय, मुंह मारते रहते हैं, तो फिर मरना पड़ता है। तो ये स्थिति है एक बद्ध जीव की। अब कोई व्यक्ति पूछे कि ये जो सारे वेद हैं, ये वेद कैसे तीन गुणों के विषय में हमें बता रहे हैं, या भगवान ऐसे कैसे बोल सकते हैं त्रैगुण्य विषया वेद, कि वेदों में ये तीन गुण बहुत ही विस्तार से वर्णित हैं। तो जो पुराण है, कितने 18 पुराण हैं, 18 पुराणों का विभाजन हुआ है तीन भाग में, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सत्वगुण के 6 पुराण, रजोगुण के 6 पुराण, तमोगुण के 6 पुराण। इसका अर्थ यह नहीं, ये ध्यान में रखना चाहिए, इसका अर्थ यह नहीं कि वो पुराण रजोगुण सत्वगुण तमोगुण में। हाँ, कई बार हमको लगता है अरे भगवान के वेद भी तो तमोगुण में है, तो फिर क्या? नहीं, वो वेद सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में नहीं है। जो मनुष्य उन गुणों में स्थित हैं, उनके लिए उनकी रचना उस प्रकार से हुई। अब जैसे कि भगवान शिवजी, वो भूत पिशाच, इसलिए उनका एक नाम है भूतनाथ, भूत पिशाच इनकी देखरेख करते। इसका अर्थ नहीं है कि भगवान शिव, वो भूत पिशाच तमोगुण में, लेकिन भगवान शिवजी तो शुद्ध सत्व में। वैसे ही बहुत से अन्य देवता, उनके जो उपासक वो रजोगुण में होंगे, तमोगुण में होंगे, लेकिन देवता वो उनमें स्थित नहीं है। तो इसलिए समझना है कि ये जो विभाजन किया गया है, ये मनुष्य का विभाजन है, और मनुष्यों का उद्धार करने के लिए जो उन गुणों में स्थित है, ऐसे ऐसे पुराण दिए गए हैं। तो सत्वगुण के 6 पुराण हैं, भागवत, विष्णु, वाराह, नारद, पद्म एवं गरुड़ पुराण। तो ये 6 पुराण जो कि सत्वगुण में स्थित हैं। सत्वगुण में स्थित होने का अर्थ, जो मनुष्य सत्वगुण में स्थित हैं, वो आकर्षित होते हैं इन पुराणों के प्रति। अब रजोगुण, मार्कंडेय, भविष्य, वामन, ब्रह्म, ब्रह्मांड, ब्रह्म वैवर्त पुराण, आप लोगों ने तो कभी नाम भी नहीं सुने होंगे, ये इतने सारे भी पुराण हैं। और फिर तमोगुण में, अर्थात जो मनुष्य तमोगुण में है, मत्स्य, अग्नि, लिंग, कूर्म, स्कंद एवं शिव पुराण। तो यहां पर प्रश्न ये है कि फिर क्यों ये सब वर्णन दिया गया, क्यों इतना विभाजन, क्यों नहीं भगवान ने केवल एक ही पुराण दिया जो कि हमें शुद्ध सत्व पर ले जाए, क्यों इतना कंफ्यूजन, क्यों, क्या उत्तर देंगे आप, इतना कंफ्यूजिंग क्यों बना दिया है, इतने इतना वैरायटी और इतना चॉइसेस क्यों दिया है, कोई चॉइस ही नहीं देते। जैसे कि आजकल यही साइकोलॉजी, आजकल के जो बड़े बड़े मॉल है ना, ये भगवान की यही साइकोलॉजी को यूज कर रहे हैं, कितनी चॉइसेस दे रखती के देख ही रखते हैं। हाँ, आपको शैंपू खरीदना है तो शैंपू के 100 वैरायटी होंगे, टूथपेस्ट खरीदना है उसके 100 वैरायटी होंगे, और वो एक ही मॉल में मिलेंगे। पहले ऐसे नहीं था। जैसे मुझे याद है, मैं जब 10वीं में था, मैं बात कर रहा हूं 1989 की, तो 1989 में जहां पर हम रहते थे, पहली बार एक जनरल स्टोर खुला था। जनरल स्टोर, जनरल स्टोर मतलब उसमें सब कुछ मिलेगा आपको, जैसे आजकल बिग बाजार, हाँ, सब, घोड़ा, कुत्ता, हाथी से लेके एयरप्लेन तक सब कुछ मिला। तो ये जनरल स्टोर खुला था इसके अंदर, और ये इतना फेमस हो गया, इसका नाम था भभूतमल, मेरे कुछ मित्र गए वहां पर। अब देखिए, यहां पर ये एक एग्जाम्पल है कि ज्यादा चॉइसेस होती तो होता क्या है। तो वहां पर गए और इतनी बड़ी पानी की टंकी, तो ये कॉलेज के स्टूडेंट जाके पूछते हैं पानी की टंकी कितने की है। तो बेचारा नया नया दुकान खोला था, तो पानी की टंकी का रेट्स वगैरह बताने लगा अलग अलग साइज की, तो सारी टंकियां बाहर निकलवा ली देखने के लिए। तो इतनी बड़ी बड़ी टंकियां बाहर आई हैं अभी देखने के लिए। और अब ये बेचारा वो बूढ़ा आदमी भभूतमल उसका नाम, बड़ी बड़ी टंकियां उठा उठा के ला रहा, और फिर सब टंकियां बाहर निकलवा ली, पतीले वतीले सब बाहर निकलवा लिए। फिर लास्ट में ये स्टूडेंट पूछता है रिफिल है रिफिल। तो इतना उसने गाली दिया, तो रिफिल लेने के लिए पूरी टंकियां निकाले। बोला आपने जनरल स्टोर खोल रखा है ना, सब दिखाओ अभी। तो ये जो बड़े बड़े मॉल खोल के रखते हैं, इसके पीछे इनका प्रयोजन क्या है कि हम कोई भी कस्टमर को हमारे हाथ से जाने ना दे। ये मेंटालिटी क्या है कि एवरीथिंग अंडर वन रूफ, आप अंदर घुसो और पूरा आपका पर्स खाली करके बाहर, पर्स भी वहां पे देना पड़ेगा। तो उसको यदि हम पॉजिटिवली या सकारात्मक दृष्टि से देखें, तो भगवान भी ये कह रहे हैं कि चाहे कितना भी घिनौने से घिनौना तुम्हारा इंद्रिय भोगो, तमोगुण में स्थित तुम्हारा इंद्रिय भोगो, आओ मैं शास्त्रों में उसका नियम बताता हूं कि उसके द्वारा तुम कैसे शुद्ध होगे। शास्त्र को मत छोड़ो, अधार्मिक तरीके से उसे मत करो, ये भगवान बता रहे हैं। तो इसलिए ये सारे जो पुराण बताए गए हैं इन गुणों में जो स्थित है, इन सारे मनुष्यों को ऊपर उठाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए नहीं, ये हमारे उद्धार के लिए, ताकि कोई भी जीव भगवान के शास्त्रों के बाहर कोई कार्य न करे और धीरे धीरे शुद्ध सत्व के स्तर पर वो व्यक्ति आए। तो अब भगवान ने केवल पहली लाइन नहीं कही कि वेदों में तो अर्जुन मैंने तीन गुणों के विषय बताए। अरे कृष्णा कैसा लगा? अरे वाह भगवान, आपने तीन गुणों के विषय बताए, तो चलो फिर रिवर्स करो चैरियट को, चलते हैं। नहीं, यहां पर भगवान आगे कहते हैं कि तुम इनसे ऊपर उठो, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम ये मत सोच लेना कि अभी तुम अपना लिस्ट निकालना शुरू करो कि कौन सा तमोगुण रजोगुण का भोग बताओ कौन से वेद में, इनसे ऊपर उठो। तो निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन। अब जब भगवान बोल रहे हैं निस्त्रैगुण्य, ऊपर उठो, तो ऊपर उठने के लिए व्यक्ति को बहुत प्रयास करना पड़ता है, जैसे सुबह उठने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है ना। अच्छा, ये सुबह उठने के में इतनी तकलीफ क्यों होती है? क्यों होती है? सबको अनुभव है, सुबह अलार्म जब बजती है तो वो जो अलार्म की जो घंटी की आवाज है, वो ऐसे यमदूत के यमलोक के घंटियों की आवाज सुनाई देती है। अरे अभी तो 1 मिनट पहले सोया था, अभी बज गई। तो जो वो घड़ी कौन से कंपनी की, कंपनी वाले को गाली देना शुरू करते, कैसी घड़ी बनाई, एक तो इतना जोर से अलार्म बोलता है। तो लोगों ने आजकल अलार्म भी ऐसे बना रखे हैं। एक हमारे हरे कृष्णा के भक्त जर्मनी के, उन्होंने एक अलार्म लाया था, वो ऐसा अलार्म था आप ताली बजाओ बंद, तो ताली मारो अलार्म बंद हो जाता, तो सुबह उठते ही ताली मारना शुरू करता था अलार्म बंद करने के लिए। वो कुछ साउंड सेंसर्स उसके अंदर थे। तो मैंने कहा फिर लगाते क्यों यार, सो जाओ। नहीं, अलार्म लगाना जरूरी है। वो ताली मार के फिर वो सो जाता था। ऐसे मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे बहुत अनगिनत अलार्म आजकल लोगों ने बनाए हुए हैं कि हाँ फॉर्मेलिटी के रूप पे एक रखना चाहिए, लेकिन इतनी तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि वो जो गुण का प्रभाव, वो गुणों का प्रभाव ऐसा है कि देखो, अब कोई व्यक्ति यदि रजोगुण में स्थित है तो नींद नहीं आती उसको, और तमोगुण के वजह से उठ नहीं सकता। रजोगुण के वजह से नींद नहीं आती, लोभ काम वासना इसकी वजह से, बस कैसे धन अर्जित किया जाए, कहां पर यहां प्रॉफिट मिले, यहां मुनाफा मिले, कहां नुकसान नहीं होना चाहिए, बस ये जो मेंटालिटी, इसकी वजह से फिर नींद नहीं आती। और जो तमोगुण में है वो इतना गिरा हुआ है कि वो उसको इसके इससे कोई सरोकार नहीं है, बस इत्मीनान से सो, चाहे फुटपाथ हो, चाहे गटर हो, चाहे 5 स्टार होटल। तो ऊपर उठने की जब बात आती है तो व्यक्ति को, जैसे कि एयरप्लेन ऊपर उठता है तो कितना उसमें थ्रस्ट डालना पड़ता है उस एयरप्लेन को ऊपर ले जाने के लिए। जब वो अपोलो 11, जो मून एक्सपेडिशन का उन्होंने छोड़ा था अमेरिका ने, तो 50% फ्यूल केवल जो ग्रेविटेशनल पुल है उसको छोड़ने के लिए लगा उसका, इतना जो पुल था ग्रेविटेशनल पुल ऊपर उड़ाने के लिए उसको। तो इसलिए भगवान जब अर्जुन को बोल रहे हैं कि निस्त्रैगुण्य, ऊपर उठो अर्जुन, तो ये अर्जुन की स्थिति को देखते हुए कि अर्जुन अब तथाकथित सत्वगुण में स्थित है। बहुत डेंजरस होता है तथाकथित सत्वगुण, क्या कि मैं तो इनको माफ कर रहा हूं, क्यों मैं इनको मारूं, इससे अच्छा मैं भीख मांगूं, दुर्योधन को राजा बनाकर मैं उसी हस्तिनापुर में भिखारी भी बन गया तो क्या। हाँ? नहीं, तो इसलिए भगवान अर्जुन को ऊपर उठने के लिए बोल रहे हैं। तो भगवान ने जब अर्जुन को ऊपर उठने के लिए कहा तो फिर वेदों के विषय क्यों बताए? तो यहां पर शाखाचंद्र न्याय इस्तेमाल कर रहे हैं भगवान। शाखाचंद्र न्याय, इसके हमने पहले भी एक बार चर्चा की है कि चंद्र को दिखाने के लिए छोटे से बालक को पिताजी क्या दिखाते हैं? शाखा। शाखा को देखो तो बेटा शाखा को देखता है, शाखा पे वो जो पक्षी है उसको देखो, उसको देखता है, उसके पीछे क्या है फिर देखता है, अरे हाँ उसके पीछे तो इतना बड़ा बल्ब है, वो बल्ब नहीं है वो चंद्र है। तो इस प्रकार से एक छोटे से बालक को पिताजी एक एक पॉइंटर से अल्टीमेट जो देखना है उस बच्चे को वो दिखाता है। तो भगवान उसी प्रकार से अर्जुन के द्वारा और वेदों में ये जो 3 गुण के विषय हैं इनके द्वारा ये बता रहे हैं। तो मान लो कि पिताजी अब चंद्र दिखाने के लिए वो बच्चे को शाखा दिखा रहे हैं, पक्षी दिखा रहे हैं, तो बच्चा वो शाखा और पक्षी में अटक गया। पिताजी बोल रहे हैं चंद्र दिख रहा है कि नहीं पीछे, अरे छोड़ो ना चंद्र, वो इनको देखो, शाखा और पक्षी को देखो। तो वैसे ही कई बार जो वेदों में 3 गुणों के जो विषय हैं उनको जो पढ़ते हैं, पालन करते हैं, ये नहीं समझते कि भगवान इनके द्वारा हमें कृष्णचंद्र तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, स्वयं जो कि कृष्णचंद्र है। लेकिन जो केवल उसमें अटक जाते हैं तो वो उस बालक के समान है जो चंद्र को देख ही नहीं पा रहे, केवल शाखा और पक्षी में अटके हुए हैं। तो वो एक माध्यम भगवान बनाते हैं ताकि उनसे ऊपर उसे उठाएं। इसलिए भगवान अर्जुन को ये शाखा चंद्र न्याय के द्वारा 3 गुणों के विषय बता रहे हैं। अब आगे भगवान कहते हैं, तो अर्जुन मानो पूछे कि ठीक है अब मैं ऊपर उठ गया, मानो कि मैं ऊपर उठ गया, अब ऊपर उठ कर करूं क्या? जैसे कि बहुत से जो ऐसे पंथ हैं, पाश्चात्य देश के कुछ ऐसे धार्मिक पंथ हैं जो कि आध्यात्म आध्यात्मिक जगत का कोई वर्णन ठीक से नहीं करते विश्लेषित रूप में। तो जब प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि आप आध्यात्मिक संसार में जाने की बात तो करते हो, पैराडाइज करोगे क्या वहां पर, क्योंकि पैराडाइज की बात करते हैं लेकिन भगवान का रूप है ऐसी बात नहीं करते। अरे तो फिर पैराडाइज में उधर अकेले क्या घास छीलोगे, करोगे क्या वहां? तो इसलिए जो हमारे शास्त्रों में सारी बातें बताई गई हैं कि आप इन तीन विषयों से ऊपर उठकर क्या करो, तो भगवान बता रहे हैं निर्द्वंद्व सर्वप्रथम बनो। तो द्वंद्व क्या है? सुख दुख लाभ हानि जय पराजय जन्म मृत्यु राग द्वेष इत्यादि 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 बहुत सारे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब यहां पर एक विशेष मुद्दा यह है, भगवान अर्जुन को ये निर्द्वंद्व ये जो शब्द कहे कि एक है जो तमोगुण में स्थित है, शुद्ध तमोगुण में, एक शुद्ध रजोगुण में, एक शुद्ध सत्व में। अब भगवान ये बता रहे हैं कि इस भौतिक संसार में जो गुण हैं वो अपने आप में केवल शुद्ध नहीं रहते, उनका कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको। किसका कॉम्बिनेशन मिलेगा? अगर कोई व्यक्ति रजोगुण में स्थित होना चाहता है तो वो पूर्ण रूपेण रजोगुण में नहीं रह सकता, तमोगुण बाय वन गेट वन फ्री होता है ना, सत्वगुण भी मिलेगा उसे। इसलिए इस मनुष्य समाज में आप देखो तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैं शुद्ध तरीके से केवल सत्वगुण में स्थित हूं, मेरे अंदर रजोगुण तमोगुण है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, ये शरीर जब तक है तब तक इसमें रजोगुण भी रहेगा तमोगुण भी रहेगा। जैसे कि एक मिस मेक्सिको प्रभुपाद से मिलने आई, मिस मेक्सिको मतलब पूरे मेक्सिको की वो परम सुंदरी, प्रभुपाद से मिलने आई और बहुत अपना हाव भाव दिखाते हुए प्रभुपाद से बातें कर रही थी। तो उसने प्रभुपाद से प्रश्न पूछा कि कुछ आध्यात्मिक प्रश्न पूछना चाहिए। तो उसने प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, इफ गॉड इज ऑल गुड देन व्हाई ही हैज क्रिएटेड सच बैड थिंग्स। तो हालांकि प्रभुपाद उसे अपना जो गीता कोर्स का आंसर है वो सब दे सकते थे, लेकिन देखा प्रभुपाद ने कि ये केवल प्रश्न पूछने के लिए, सबको दिखाने के लिए कुछ ऐसा पूछ रहे। तो प्रभुपाद ने भी उसी प्रकार से उत्तर दिया, सो यू आर मिस मेक्सिको, यू आर सो ब्यूटिफुल। तो एकदम हाँ, ऑब्वियसली, बट व्हाट अबाउट योर स्टूल? एल, जितना वो मिक्स मेक्सिको का खिताब मिला था सब सेप्टिक टैंक में। तो प्रभुपाद ने कहा, यू लुक सो ब्यूटिफुल बट स्टिल यू हैव समथिंग विच इज सो स्टिंकिंगली अगली, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से कोई व्यक्ति यदि बहुत, जैसे वो है ना वो कथा एक गुरु और शिष्य की, को गुरु जी ने शिष्य से कहा कि गाय जो है वो सत्व गुण में है और गाय का गोबर जो है वो उससे भी ज्यादा शुद्ध सत्व में स्थित है। तो फिर शिष्य बोलता है, गुरु जी आप तो शुद्ध सत्व में स्थित हो पहले से। हरे कृष्ण। तो गुरु जी होंगे शुद्ध सत्व में स्थित, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। तो अलग अलग जो गुण हैं, भगवान ये बता रहे हैं कि ये संसार ये सारे गुणों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो हमारे जीवन में भी यदि सत्वगुण रजोगुण ये सब का कॉम्बिनेशन देखें, जैसे कि सुख दुख, कोई व्यक्ति जब सुखी रहता है तो वो अपने आप को बहुत ही गुडनेस में मांगता है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, है ना, गुडनेस, ओ माय गुडनेस, बोलते भी। और जैसे ही दुख आ जाता है तो फिर बैडनेस है ना, तो फिर अब उसमें लैमेंटेशन, अर्थात लैमेंटेशन, शोक करना, ये सब तमोगुण के लक्षण। अब यही सुख दुख, उसे जिससे सुख मिला है, जिसके वजह से वो अपने आप को गुडनेस में मान रहा है, वही कैटेगरी के सुख, आप सुख को आप किसी और के जीवन में डाल दो। पुलिस ने चोर को पकड़ा, पुलिस को मिला परमवीर चक्र, पुलिस बहुत खुश, चोर की हालत क्या है? स्थिति वही है, एक खुश हो रहा है, एक बेचारा अंदर। अब बेचारा कौन है, अब ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो इस भौतिक संसार में भगवान ने, राधानाथ महाराज एक अपने प्रवचन में बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे थे, उन्होंने उदाहरण दिया, कृष्णा इज अ टेलर एंड ही हैज स्टिच्ड अ कोट फॉर एवरीवन। भगवान ने सबके लिए एक स्पेशल कोट सिला है, लेकिन वो ये बता रहे थे कि जो कोट भगवान ने मेरे लिए सिया है वो कोई और नहीं पहन सकता। हालांकि दिखने में दोनों कोट है, कई बार हम एक देख, अरे दे दे, बारिश आ रही, तेरा रेनकोट दे दे, तेरा जैकेट दे दे। वो बता रहे थे कि ये ऐसा कोट है कि हाँ दो हाथ दिखेंगे और गर्दन भी दिखेगी, लेकिन वो केवल वही पहन पाएगा। तो ये किस संदर्भ में भगवान बता रहे थे? भगवान इस संदर्भ में बता रहे थे कि महाराज इस संदर्भ में बता रहे थे कि जो मेरी समस्या है और जो उस समस्या का हल है, वो भगवान ने उस टेलर मेड कोट जो है उसके अनुसार बनाया। तो मेरी समस्या का जो हल है वो कोई दूसरा वो कोट पहन के अपनी समस्या का हल नहीं कर सकता, उसके लिए भगवान ने अलग कोट बनाया, तीसरे के लिए अलग, चौथे के लिए अलग, पांचवे के लिए, ऐसे जितने जीव हैं सबके लिए उनकी समस्या और उनकी समस्या के हल का कोट अलग अलग है। तो यहां पर द्वंद्व केवल ये नहीं समझना चाहिए कि मेरे जीवन में अभी दुख है या सुख है, तो बस यही दो प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं। कई बार हम देखते हैं कि किसी का जय किसी और की पराजय है और किसी का पराजय किसी और की जय है। वेन टेबल्स टर्न यू मे नॉट नो, अर्थात जो भी कुछ हो, ये सारे जो द्वंद्व हैं, कोई जन्म ले रहा है, कोई जन्म ले रहा है तो कितनी खुशी होती है। हाँ, वही व्यक्ति आगे चलकर ऐसे कर्म करे तो वो मरने पर भी खुशी होती है लोगों को, जबकि दुख होना चाहिए ना। और कई कई हैं जो कि साधारणतः जब मरते हैं तो उनके लिए दुख प्रकट किया जाता है, और कई जन्मते हैं, जैसे दुर्योधन जब जन्मा तो गधे ढेंचू ढेंचू कर रहे थे। हाँ, दुर्योधन के जन्म पर सब अपशकुन और गधे वो कर रहे हैं, आवाजें निकाल रहे हैं, उल्लू, ये सियार, श्रृगाल, ये सब की आवाजें आ रही हैं। तो ये सारे जो द्वंद्व हैं जिससे ये संसार बना हुआ है, भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम ये मत समझो कि तुम ये युद्ध का परित्याग कर कर तुम सुखी रहोगे, क्योंकि तुम्हारी जो सुख की परिभाषा है वो इस संसार के सुख की परिभाषा नहीं है। एक हम परिभाषा लिखते हैं, मेरे सुख की परिभाषा, मुझे ये मिल गया, तो उसी के साथ साथ जो प्रकृति है वो भी लिखती रहती है। हाँ, तो तुम्हें जो ये मोटर गाड़ी, हाँ, जैसे कि एक बंबई में एक किस्सा हुआ था, एक स्टूडेंट, उसे ये चाहिए थी कॉलेज के लिए मोटरसाइकिल। इतना उसने उधम मचा दिया घर में, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। तो पिताजी बोल रहे हैं, भाई कॉलेज जाने के लिए बसें जा रही हैं, रिक्शा जाता है, टैक्सी जाता है, तुमको मोटरसाइकिल क्यों चाहिए? अब विद्यार्थी है युवावस्था में, वो केवल कॉलेज जाने के लिए मोटरसाइकिल थोड़ी मांग रहा था। पिताजी भी जानते हैं, पिताजी भी अपने अपने तर्क दे रहे थे। तो महायुद्ध चल रहा है घर में, मोटरसाइकिल चाहिए, क्या फायदा आपके मेरे पिता होने का, इसलिए पैदा किया था बस में भेजने के लिए। और वो पिताजी क्या फायदा तू मेरे पुत्र होने का, मेरा खर्चे का बिल बढ़ाता रहता है तू, अरे कम करना चाहिए, मेरे लिए तेरे को कोई गाड़ी वाड़ी लानी चाहिए, मेरे से मांगता है। तो उसने बहुत झगड़ा कर कर मोटरसाइकिल ले ली, और फिर मोटरसाइकिल ली उसके वजह से फिर उसका एक्सीडेंट हुआ, खत्म। 3 महीने में वो लड़का खत्म। तो यहां पर ये देखा जा रहा है कि हम अपने सुख का परिभाषा लिखते हैं और भौतिक प्रकृति लिखती है। इसने क्या लिखा है, मेरे सुख की परिभाषा है मोटरसाइकिल। भौतिक प्रकृति ने भी अपने रजिस्टर में लिखा क्या, इसको मोटरसाइकिल, लेकिन इसके दुख की परिभाषा वहां पर हेडिंग क्या था, दुख की परिभाषा है कि इसे मोटरसाइकिल मिलनी चाहिए, और इसके सुख की परिभाषा मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल मिली, लेकिन दोनों का हेडिंग प्रकृति के रजिस्टर में दुख की परिभाषा थी, यहां पर सुख की। तो वही भगवान बोल रहे हैं कि तुम अपने रजिस्टर में लिख रहे हो कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, तो ये मेरी सुख की परिभाषा है, मैं अपने रजिस्टर में लिख रहा हूं कि तुम ये युद्ध नहीं करोगे तो नर्क जाओगे। तो ये अर्जुन के लिए थोड़ा भौचक्के में डालने वाला था। तो वैसे ही ये सारे जो द्वंद्व हैं, भगवान बोल रहे हैं कि तुम एक द्वंद्व से दूसरे द्वंद्व, दूसरे से फिर से उस द्वंद्व में गिरने का प्रयास छोड़ दो, ऊपर निर्द्वंद्व इन द्वंद्वों के ऊपर उठो हे अर्जुन, और फिर ऊपर उठकर शुद्ध सत्व में स्थित हो। तो अब श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भगवान उद्धव जी को बता रहे हैं कि जो तीन गुण हैं, तीन गुणों के कौन कौन से कार्य होते हैं, और यहां पर भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि उन तीनों गुणों के कार्यों से ऊपर उठकर तुम शुद्ध सत्व पर कैसे स्थित हो। तो शारीरिक क्रियाओं के तीन गुण, जैसे कि जितनी भी हमारी शारीरिक क्रियाएं हैं वो सब तीनों गुणों में स्थित हैं। हम खाते हैं, खाना तीन गुण में स्थित है। हम बोलते हैं, बोलना तीन गुण में स्थित है। हम क्या पहनते हैं वो तीन गुण में स्थित है। हम कब कैसे कहां सोते हैं वो तीन गुण में स्थित है। जितनी भी हमारी शारीरिक क्रियाएं हैं वो तीन गुण में स्थित है। और 11वें स्कंद में बताया गया है कि इन शारीरिक क्रियाओं को जो कि तीन गुणों में स्थित हैं, उनके आगे हम कृष्ण को लगा दें तो नित्य शुद्ध सत्वस्थ, शुद्ध सत्व में हम स्थित हो सकते हैं। आगे 11वें स्कंद में भगवान बताते हैं निवास स्थान तीन गुणों में स्थित है। जो लोग एकदम तमोगुणी माहौल में रहते हैं, जहां पर गंदगी और अलग अलग प्रकार के सारे कुकर्म चलते हैं, ऐसी जगहों पर जो रहते हैं वो है तमोगुण में। और प्रभुपाद कहते हैं जो शहर हैं वो हैं रजोगुण में स्थित, और फिर जो गांव हैं वो सत्वगुण, मतलब जनरली कहा गया, आजकल गांव में भी सब प्रकार के हो जाते हैं, लेकिन गांव जो है वो बताया गया है कंट्री साइड, ये सब सत्वगुण में स्थित। और फिर शास्त्र में बताया गया जो भगवान के मंदिर हैं वो शुद्ध सत्व में स्थित है, हालांकि वो मंदिर धारावी में क्यों ना हो, अगर आप धारावी जानते हैं तो वहां पर भी यदि वो मंदिर क्यों ना स्थित हो, लेकिन मंदिर जो भगवान बता रहे हैं शुद्ध सत्व, क्योंकि वो डायरेक्टली किससे संबंधित है, जो कि तीनों गुणों के परे हैं। उसी 11वें स्कंद में भगवान बताते हैं देह त्याग के तीन गुण। जो सत्व गुण में देह त्यागता है वो स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो कोई भी स्वर्गवासी नहीं बन जाता जो सत्व गुण में, और सत्व गुण में देह त्यागने के बहुत से नियम और क्रम बताए गए, उसकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे। और फिर रजोगुण में जो देह त्यागता है वो यहीं पर रह जाता है भौतिक संसार में, और जो तमोगुण में देह त्यागता है नीचे नरक योनि में जाता है। फिर कर्ता के तीन गुण भगवान बता रहे हैं कि जो ऐसे कर्म करें जिनसे दूसरों का उद्धार हो वो सत्व गुण में, जो ऐसे कर्म करता है केवल खुद के उद्धार के लिए, बस दुनिया से कोई मतलब नहीं, बाकी दुनिया बाढ़ में, मैं और मेरा, वो रजोगुण में। और जो ऐसे कर्म करता है जिससे दूसरों को तकलीफ होती है वो है तमोगुण में। तो तीन प्रकार के कर्ता भगवान बता रहे हैं, और श्रद्धा के तीन गुण। जो धर्म का पालन करता है वो है सत्वगुण में स्थित, जो धर्म का पालन केवल अपने इंद्रिय भोग के लिए करता है वो रजोगुण में स्थित, और जो धर्म को मानता ही नहीं बिल्कुल, जो नास्तिक, वो तमोगुण में स्थित। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि एक तो द्वंद्व हो गए, जो पहला लक्षण भगवान ने बताया इससे पहले का, और अब भगवान बता रहे हैं कि ये जो तीन गुण में अलग अलग क्रियाएं और स्थितियां इस भौतिक संसार की और मुझसे संबंधित, इसमें से जो भी चीज भगवान से, यदि शरीर, निवास स्थान, अपना देह त्याग, अपना कर्म और अपनी श्रद्धा, भगवान श्री कृष्ण से डायरेक्ट कनेक्शन उसका हो जाता है, कृष्णा कनेक्शन जिसको बोलते हैं, तो शुद्ध सत्व में पहुंच जाता है। तो उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, केवल बोलते हैं ना ऐड कृष्णा। और आगे अब भगवान बता रहे हैं कि तुम योग क्षेम की चिंता मत करो। योग का अर्थ क्या होता है, यहां पर हमारे आचार्य बता रहे हैं, योग का अर्थ है नहीं प्राप्त वस्तु की चिंता। जो वस्तु अभी प्राप्त नहीं हुई है, कब होगी, होगी कि नहीं होगी, कितनी होगी, उसकी चिंता। और क्षेम का अर्थ है फिर वो वस्तु जब प्राप्त हो जाती है तो अब उसकी रक्षा की चिंता। बाप रे, इतना तो नहीं मांगा था, अभी इतना इसको कैसे मेंटेन करना है, तो फिर उसकी चिंता कि अभी इतना सब कुछ मिल गया, अभी कहीं ये छूट ना जाए और इसकी रक्षा कैसे करें, फिर उसकी चिंता। इसलिए कहते हैं, एक हमारे ब्रह्मचारी एग्जाम्पल दे रहे थे कि पहले एक व्यक्ति बहुत लालायित रहता है कि जो नई मॉडल कार आई है वो कार मैं ले लूं ले लूं, दिखने में कितनी अच्छी, बगल वाले के घर में भी आ गई या इस वाले के घर में भी आ गई, मेरे घर में नहीं, तो फिर वो लालायित रहता है। तो उसका एनालिसिस किया गया है, ये एक्चुअल एनालिसिस है साइकोलॉजिस्ट का, कि जब तक वो गाड़ी अपने घर में नहीं लाता तब तक उसका सुख बना रहता है मन में, हाँ, कि मैं ऐसे चलाऊंगा, ऐसे बैठूंगा, ऐसे दरवाजा खोलूंगा, ऐसे स्टीयरिंग एक हाथ से घुमाऊंगा। तो मन में वो सब जो कल्पनाएं होती, जैसे ही गाड़ी आ जाती है शोरूम से, फिर उसके बाद में क्षेम, अरे बाप रे, देखता है फ्यूल टैंक खाली है, पेट्रोल का रेट क्या चल रहा है और इसका रेट क्या है गाड़ी का, फिर उसका मेंटेनेंस, सर्विसिंग, फिर कितने सारे बतेरी चीजें होती जाती है उसके साथ, फिर बाद में उसकी चिंता। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम क्यों ये सब चिंता कर रहे हो कि ना कौन ये हस्तिनापुर जो राज्य है, ये हस्तिनापुर राज्य का क्या होगा, या मेरे परिवार का क्या होगा, ये कौरवों का क्या होगा, उनके परिवारों का क्या होगा, उनके परिवारों के परिवारों का क्या होगा, ये इन सब से ऊपर उठो। और फिर अंततः भगवान बोल रहे हैं आत्मवान बनो। तो यहां पर बहुत ही सुंदर तरीके से आत्मा और वान, वान का अर्थ क्या होता है, जो धारण करने वाला, यहां पर आत्मा का एक अर्थ बताया गया है स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अर्थात क्या, भगवान श्री कृष्ण को जो धारण किए हैं। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन तुमने मुझे धारण किया है। तो अर्जुन पूछे कैसे, मैंने आपको कैसे धारण किया है। तो भगवान दिखा रहे हैं तुम्हारा रथ कौन हाँक रहा है, मैं। तो ओनर कौन है रथ का, तुम। है ना, मैं तो खाली ड्राइवर हूं। तो तुमने मुझे धारण किया है तुम्हारे इस रथ के ऊपर, लेकिन वो ड्राइवर कोई साधारण ड्राइवर नहीं है, ये समझना आवश्यक है। जैसे कि ये उदाहरण हमारे आचार्य इसलिए दिए हैं कि जब कोई मालिक ऐसे ड्राइवर को चूज करता है जिसे गाड़ी चलाना आता है, तो पीछे नींद मारता है वो, है ना। मालिक अभी उसने कल ही गाड़ी चलाना सीखा है, तो सोचो मालिक पीछे चैन से बैठेगा वो, तो उसकी हालत क्या होगी पीछे। तो यहां पर हमारे शरीर की तुलना रथ से की गई, जैसे श्वेत श्वेतार उपनिषद में शरीर की तुलना रथ से की गई, और इस रथ की बागडोर यदि हम भगवान श्री कृष्ण के हाथ दें तो हमें कौन सा खिताब मिलेगा, आत्मवान, कि हम जो कि भगवान को अपने हृदय में अपने चेतना में धारण किए हुए। तो भगवान आत्मवान के द्वारा अर्जुन को यह बता रहे हैं कि तुम क्यों ये सब इसके बारे में कि ये राज्य, ये सुख, ये स्वर्ग, ये नरक, ये द्वंद्व, क्यों इन सब की तुम चिंता करते हो, तुम्हारा रथ कौन हाँक रहा है, इधर देखो मेरे तरफ देखो। अरे इन सब के द्वंद्वों के वेद के विषयों का बाप बैठा है यहां पे, तुम्हारा रथ हाँक रहा है। जैसे एक डिसाइपल ने प्रभुपाद को प्रश्न लिखा, प्रभुपाद आई एम वेरी मच ट्रबल्ड बाय लस्ट। तो प्रभुपाद ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, प्रभुपाद ने कहा यू स्टार्ट अटेंडिंग मंगल आरती एंड व्हेन यू सी द ब्यूटिफुल फॉर्म ऑफ कृष्णा, तो प्रभुपाद ने उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके लिख दिया, कृष्णा हैज द पावर टू किक मिस्टर लस्ट एंड द फादर ऑफ मिस्टर लस्ट एंड द फादर ऑफ मिस्टर लस्ट। हिंदी में बोलते ना, लस्ट और उसके बाप और उसके भी बाप पूरे खानदान को लात मारने की शक्ति होंगी। तो ये भगवान बता रहे हैं कि अरे धारण किसको किया, देखो तुम आत्मवान हो, तुम भगवान को तुमने अपने रथ पर धारण किया, तो अपने मन मनोरथ पर और अपने शरीर के रथ पर भी मुझे धारण करो। इसलिए अंत में यदि हम इस पर गौर करें कि भगवान ने निर्योग क्षेम उसके बाद आत्मवान शब्द इस्तेमाल किया है इस श्लोक में, तो अर्थात ये भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम स्वयं की चिंता छोड़कर मैं जिस चिंता में हूं, भगवान की चिंता क्या है, धर्म की स्थापना करनी है, ये भगवान की चिंता। तो अर्जुन तुम केवल अपनी चिंता में पड़े हुए हो कि अरे मेरा क्या होगा, उस दुर्योधन का क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा। हाँ, तो कई बार हमारी हमारी संकुचित चेतना यही रहती है। तो भगवान बता रहे हैं इसलिए कि तुम ये योग क्षेम के परे जाओ, और इसी भगवद गीता में भगवान ने आगे भी कह दिया, अनन्यस चिंतयन तो माम ये जन पर उपासते तेषाम सतत युक्ता नाम, क्या था, तेषाम नित्य भ्युक्ता नाम योगक्षेम वहाम्या, कि जो अनन्य रूप से मैं उसका योग और क्षेम भी संभाल लूंगा। भगवान बोल रहे हैं तुम केवल अनन्य रूप से मुझ पर श्रद्धा रखो, मुझ पर विश्वास रखो, आत्मवान बनो। इसलिए जब हम भगवान श्री कृष्ण, या यहां पर हम क्या समझेंगे हमारी साधना भक्ति में, जब हम हमारी साधना भक्ति या हमारी कृष्ण भक्ति की चिंता करते हैं तो हम आत्मवान कहलाएंगे, कि मेरे 16 माला ठीक से कैसे हो, मेरा सत्संग ठीक से कैसे हो, मेरा शास्त्र अध्ययन ठीक से कैसे हो, जो भी भगवान श्री कृष्ण से संबंधित चिंता है, जब वो चिंताएं हम करेंगे तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें आत्मवान बना दूंगा। और आत्मवान वो 1,000 रुपए का नोट है जिसके अंदर योगक्षेम भी है, और यदि तुम केवल योगक्षेम के पीछे जाओगे तो तुम्हें वो केवल 1 रुपए का नोट है, उसके अंदर एक हजार नहीं। तो ये भगवान आज के श्लोक के द्वारा हम सबको समझा रहे हैं कि तीन गुणों के जो विषय वेदों में बताए गए हैं उसका कारण क्या है। अर्जुन उससे ऊपर उठो, केवल ऊपर मत उठो, निर्द्वंद्व और फिर नित्य सत्वस्त शुद्ध सत्व में स्थित होकर तुम योग और क्षेम की चिंता न करते हुए हे अर्जुन तुम आत्मवान बनो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता की जय।